हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव है, अर्थात आज की शुभ दिन में जो फाल्गुन महीना का पवित्र पूर्णिमा तिथि है, इस तिथि में श्री चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे। आज से 522 साल पहले इसलिए हम यहाँ इस तिथि को इस महोत्सव को मना रहे हैं। आप सब आए हैं, बाहर से कौन कौन आए हैं? वेरी नाइस। सब यहाँ बाहर के लोग ही हैं, यहाँ के लोग नहीं हैं, मंदिर के भक्त लोग। वेरी गुड। इस अवसर पर आज हम भगवान के बारे में, श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण क्यों आते हैं? भगवान क्यों आते हैं यहाँ इस भौतिक जगत में? भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान अपने धाम में विराजमान हैं, गोलोक वृंदावन में भगवान नित्य विराज करते हैं, पर भौतिक जगत में भगवान धर्म संस्थापन करने के लिए आते हैं। भगवद गीता का यह श्लोक आप सबको याद है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् श्रीजामहम्। अच्छा, यह तो हम अब एक गाना गाएंगे। ये श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में 8 श्लोक जो सार्वभौम भट्टाचार्य ने लिखे थे, अच्छा इसका तो मैं देख रहा था, इसको कौन कॉपी प्रिंट कौन किया था? हु प्रिंटेड दिस? पता नहीं है किसी को। अच्छा, गंगानारायण हु प्रिंटेड दिस? कौन प्रिंट किया है इसको? हाँ, अच्छा मैं बोला था हिंदी में करने के लिए, ये मराठी में आ गया है। हाँ, हिंदी है, बल्कि इसका अनुवाद जो पीछे 3 और इसका 3 श्लोक, 3 नंबर श्लोक प्रिंटिंग ठीक है? ये एक कॉपी दीते बोले तो, अरे कॉपी देखी, एक कॉपी तो ये है आज। No, no, this is different. This is Sachisuta's technique. Sachi. कौनटा ये करा हो अच्छा किसको पास सची सुताष्टकम मिला है और किसके पास सची तनयाष्टकम मिला है ओके के दिए उज्जवल वारण गौड़ वारती हम So what to do? Anyway, let's just sing Hare Krishna. Simple. How many copies? Achha, Ujjwala Varana Gaura Vara Deham. Ye kiske paas hai? Achha. Aur jisko ye mila hai, balki dusra aur koi ye hai, wo kiske paas hai? नव गौरवरम नव पुष्प शरम ओके तो ये उज्जवल वर्ण ही हम गाते हैं अब दोनों ही सार्वभौम भट्टाचार्य का लिखा हुआ है तो वो शेयर कर लेना जिसके पास नहीं है Please see that and share it with others. Ujjwala Varana Gauravara Deham Bilasita Bilasati Niravadhi Bhava Videham Tribhuvana Pavana Kripaya Leshang Tang Pranamamicha Shri Shachi Tanayam इसका तीन अनुवाद हुआ है तीन श्लोक का तो मैं बोल रहा था हाँ ये श्लोक का अनुवाद ऐसे लिखा है अद्वितीय तचा सच्चिदानंद विग्रह हा उज्जवल यसा सुवर्ण वर्ण च आहे ठीक है आपको सब समझ गए कौन सी भाषा में ये है यह मराठी कौन जानते हैं हम मराठी कोई भी नहीं यह मराठी में है अच्छा ठीक है तो उज्ज्वल वरण गौरवर देहम बिलसति निरवधि भाव विदेहम उनका उज्जवल वर्णन कैसा उनका शरीर का रंग कैसा है उज्जवल वर्णन उनका शरीर उज्जवल गौरवर देहम गौर मतलब गोरा बिलसति निरवधि भाव विदेहम और उनका शरीर में निरंतर विचित्र भाव का विलास हो रहा है त्रिभुवन पावन कृपया लेशम उन्होंने अपना कृपा के लेश के द्वारा त्रिभुवन को सारे संसार को तीन भुवन को उद्धार कर रहे हैं पावन कर रहे हैं तं प्रणमामि च श्री शचि तनयम उन श्री शचि तनय मतलब श्री शचि माता के पुत्र को मैं प्रणाम कर रहा हूं गद गद अंतरो भाव विकारम दूर जन तर जन नाद विशालम गद गद अंतर भाव विकारम उनके अंतर भाव के भावों के द्वारा द्रवीभूत हैं और उनका स्वर कंठ गद 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 का हिंदी में आता है ये गद गद शब्द जिससे जब भाव के द्वारा आनंद के दो कारण जब स्वर बंद हो जाता है, रुक जाता है, भक्ति भाव के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु के कंठ वैसे रुद्ध हो गया है। गदगद अंतर भाव, गदगद अंतर भाव विकारम और दूरजन तरजन नाद विशालम। और दूरजनों को शासन करने के लिए उन्होंने गंभीर स्वर से विशाल नाद या हुंकार कर रहे हैं। भवो भयो भंजन कारण करुणम, उनकी उन्होंने अपने करुणा के द्वारा इस भौतिक जगत के समस्त भय को निवारण कर रहे हैं। भवो भयो भंजन कारण करुणम तं प्रणमामि च श्री सचितानयम, उन श्री सचितानय श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ। अरुणाम बरोधर चारु कपोलम इंदु विनिंदित नखचय रुचिरम जल्पित निज गुण नाम विनोदं तं प्रणमामि च श्री सचितानयम। अरुणाम बरोधर, अरुण सूरज के उदय के पूर्व में जो गगन में जो रंग होता है उस रंग को अरुण वर्ण कहा जाता है। असल में अरुण कौन है? अरुण है गरुड़ का भाई और वो सूर्य देव का रथ का सारथी है। और उनका रंग सूरज देव के सूरज का उदय के पूर्व अरुण का प्रकाश होता है। जब जब रथ आने वाला, रथ के सामने कौन आता है? रथ का सारथी आता है। तो अरुण कृष्ण का रथ, सूरज का, सूर्य देव का रथ का सारथी है अरुण। और अरुण का रंग है लाल रक्तिम। अरुणाम बरधर चारु कपोलम, उनका सुंदर उन्होंने ये अरुण वर्ण का कपड़ा पहने हुए है। सन्यासी है चैतन्य महाप्रभु, उनका कपड़ा का रंग है अरुण वर्ण। अरुणाम बरधर चारु कपोलम और उनका सुंदर, कपोल का मतलब है गाल, और उनका चंद्र विनिंदित नखचय रुचिरम, उनका सुंदर नख चंद्रमा का कांति को निंदा कर रहा है। और जल्पित निजगुण नामो विनोदम, उन्होंने अपना मतलब श्री श्री राधा कृष्ण का नाम गुण और लीला कीर्तन कर रहे हैं। वो श्री सचिनंदन को मैं प्रणाम करता हूँ। जय श्री श्री गौरनिताय की जय। जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। चंचल चारु चरण गति रुचिरं मंजिर रंजित पदयुग मधुरम चंद्र विनिंद, अच्छा इस एक फोर्थ ये है, विगलित नयन कमल जल धारं भूषण नवरस भाव विकारम गतियति मंथर नृत्य विलासं तं प्रणमामि च श्री सचितानयम। उनके नयन कमल से जलधार, जल अर्थात अश्रु बह रहा है और उनका शरीर में जो भगवत भक्ति के कारण जो भाव का विकार, रस का विकार हो रहा है वो लग रहा है कि वो उनका शरीर का अलंकार है, और नाचते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए उनका गति बहुत धीर है, मंथर है। वो श्री सच्चिदानंद को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। चंचल चारु चरण गति रुचिरंग मंजिर रंजित पदयुग मधुरम चंद्र विनिंदित शीतल बदनम तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानंद। उनका चंचल चरण में उन्होंने जो गमन कर रहे हैं, इसलिए उनका गति बहुत सुंदर मनोहर। उनके पाँव में मंजीर शोभा प्राप्त कर रहा है, और उनके बदन के शीतलता चंद्र से भी अधिक है। वो श्री सच्चिदानंद श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। धृतकोटि डोर कमंडलु दंडं दिव्य कलेवर मुंडित मुंडं दुर्जन कल्मष खंडन दंडं तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानंद। उन्होंने डोर अर्थात कौपीन और बहिर्वास पहने हुए हैं, उनका हाथ में दंड है, और कमंडलु के द्वारा उनका दिव्य कलेवर विभूषित है, उनका मस्तक मुंडन किया हुआ, और उन्होंने दुर्जनों को दंड देने के लिए दंड धारण किए हैं। वो श्री सच्चिदानंद तनय को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। भूषण भूरज अलोका बोलितम कंपित बिंबा धरोबर रुचिरम मलयज विरचित उज्जवल तिलकम तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानंद। धरती का धूलि जो उनका अलका में लगा हुआ है, वो उनका भूषण बना है। बिंब फल जैसे आरक्तिम उनका आधर कंपित तो हो रहा है। उनके ललाट में उज्जवल मलयज चंदन का तिलक शोभा प्राप्त कर रहा है, शोभा प्रदान कर रहा है। वो श्री सच्चिदानंद श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। निंदित अरुण कमलोदल लोचनं आजानुलम्बित भुजयुग आजानुलम्बित श्रीभुजयुगलम कलेवर कैशर नर्तक वेशम तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानंद। उनके आँखें लाल कमल के भांति सुन आरक्तिम है, उनके बाहु उनके हाथों जानू तक विलंबित हैं, उनका शरीर किशोर और उनका वेश है एक नर्तक जैसे। वो श्री सच्चिदानंद श्री गौड़हरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसका इंग्लिश कॉपी नहीं है ना, मधुद्विषा प्रभु के लिए। देयर इज नो इंग्लिश कॉपी ऑफ इंग्लिश सॉन्ग बुक आछे एखाने। उज्ज्वल वरण गौरवर देहं विलसति निरावधि भाव विदेहम्। उज्ज्वल वरणं गौरवर देहम् विलासति निरावधि भाव विदेह। त्रिभुवन पावन कृपायलेशं तं प्रणमामि च श्रीश त्रिभुवन पावन कृपायलेशं तं प्रणमामि च श्रीश गद गदयन्तर भाव विकारं दुर्जन तर्जन नाद विशाल। भव भयो भंजन कारण करुणं तं प्रणमामि च श्रीश चित्तानय। अरुणाम्बर धर चारु कपोलम् इन्दु विनिन्दित नखचय रुचिरम्। अरुणाम्बर धर चारु कपोलम् इन्दु विनिन्दित नखचय रुचिरम्। जल्पित निज गुण नाम विनोदं तं प्रणमामि च श्रीश चित्तानय। जल्पित निज गुण नाम विनोदं तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानन्दाय নয়ন কমল জলধারণ ভূষণ নবরস ভাব বিতারণ নয়ন কমল জলধারণ ভূষণ নবরস ভাব বিতারণ গতিয়তি মন্থর নৃত বিলাসম তং প্রণমামি চ শ্রী সচ্চিদানন্দায় গতিয়তি মন্থর নৃত বিলাসং তং প্রণমামি চ শ্রী সচ্চিদানন্দায় চারু চরণ গতি রুচির মঞ্জির রঞ্জিত পদ যুগ মধুর চল চারু চরণ গতি চঞ্চল চারু চরণ গতি রুচিরং মঞ্জির রঞ্জিত পদ যুগ মধুরং চন্দ্র বিনিন্দিত শীতল বদনং তং প্রণমামি চ শ্রী সচ্চিদানন্দায় চন্দ্র বিনিন্দিত শীতল বদনং তং প্রণমামি চ শ্রী সচ্চিদানন্দায়। मंडलोदंडं दिव्यकाले बार मुंडित मुंडं दूरजना कालमाश खंडन दंडन तं प्रणामामि च श्री सचितानया अलोकाबलितं कंपित बिम्बा धरवर रुचिरा भूराज अलोकाबलितं कंपित बिम्बा धरवर मलयज विरचित उज्ज्वलतिलकं तं प्रणामामि च श्री सचितानय तयरुन कमलोदलोचनं आजानुलंबित श्रीभुजयुगलम् कलेवर कैशर नर्तक बेशं तं प्रणामामि च श्री सचितानय उज्ज्वलवरना गौरवरदेहा विलसति निरवधि भावविदेहा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Nittai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Jaya Prabhupad 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 Gaur प्रेमानंदे हरि हरि बोल जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतो श्री श्रीमद अभय चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय इस्कान फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद की जाए श्री श्री राधा कृष्णा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जाए श्री श्री राधा मदन मोहन की जाए श्री श्री कृष्ण बलराम की जाए श्री श्री गौर निताय की जाय श्री चैतन्य महाप्रभु की जाय श्री चैतन्य महाप्रभुज अपियरेंस डे सेलिब्रेशन की जाय समवेत भक्त वृंद की जाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांगो ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कौन है कृष्ण कौन है कृष्ण कौन है परमेश्वर भगवान है आप सब भगवान को मानते हैं हाँ मैं जो पूछता हूं कि आप भगवान को मानते हैं सब बोलते हैं हाँ भगवान को मानते हैं और इसके बाद जब मैं पूछता हूं कि भगवान साकार है या निराकार है। हाँ, कौन बोलते हैं साकार है? अच्छा, साकार का मतलब भगवान का आकार है, भगवान का रूप है, हाँ, भगवान का गुण है, हाँ, भगवान का लीला है, मतलब भगवान का कार्यकलाप है। हाँ, अच्छा, तो भगवान भगवान जरूर ही भगवान का रूप होगा, बल्कि भगवान का रूप कैसा है? भगवान का रूप क्या भौतिक है, पंचभौतिक है, या भगवान का रूप अच्छा, भगवान का रूप चिन्मय है, अर्थात भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, भगवान का रूप सत चित आनंदमय है। और हमारा रूप कैसा है? हमारा रूप असत, अचेतन और निरानंद है। हाँ, सत चित आनंद, मतलब सत का मतलब क्या है? सत का मतलब जो नित्य है। हाँ, चित का मतलब चेतन। हाँ, और आनंद का मतलब ये सब जानते हैं, आनंद क्या है। हाँ, बल्कि हमारा रूप क्या नित्य है? ये शरीर नित्य है या नाशवान है? तो मतलब ये शरीर, हमारे ये शरीर सत नहीं है, हमारे ये शरीर कैसा है? ये हमारे ये शरीर असत है, असत, सत नहीं, सत का विपरीत। हाँ, भगवान का शरीर अविनाशी है, बल्कि हमारा शरीर नाशवान है। हमारा शरीर क्या चेतन है? जब तक आत्मा रहता है शरीर में तब तक चेतन है, जब आत्मा चला जाता है तब शरीर अचेतन बन जाता है, शरीर का मृत्यु होता है, शरीर जड़ बन जाता है, अचेतन। और ये शरीर में आनंद है, आनंद हम ढूंढते हैं, आनंद का अन्वेषण करते हैं, बल्कि ये शरीर में आनंद नहीं है। जब हम भगवान को, भगवान के रूप को स्वीकार करते हैं, तो हमको सोचना होगा कि हमको याद रखना होगा कि हमको समझना होगा कि भगवान का ये रूप नित्य है, भगवान का ये रूप सच्चिदानंदमय है, हमारे जैसे शरीर भगवान का नहीं है। और भगवान का ये शरीर यद्यपि चिन्मय है और चिन्मय लोक में नित्य विराजमान है, बल्कि भगवान कभी कभी इस भौतिक जगत में आते हैं, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आए हैं, आए थे। चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, केवल दो अंतर ऐसे हैं कि कृष्ण स्वयं आए हैं कृष्ण रूप ही में नहीं, बल्कि राधा रानी के कांति और राधा रानी के भाव लेकर। कृष्ण का रंग है कृष्ण श्याम, घन श्याम, और राधा रानी के रूप, राधा रानी का कांति कैसी है? तप्त कांचन गौरांगी, राधा रानी है गोरी। राधा रानी के ये रूप लेकर कृष्ण आए हैं, ये हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। और चे कृष्ण भगवान के रूप में नहीं आए हैं, भगवान के भक्त के रूप में आए हैं, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को पहचानने में कभी कभी थोड़ा सा असुविधा होता है, दिक्कत होता है। आम आदमी श्री चैतन्य महाप्रभु को नहीं पहचानते हैं, बल्कि हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं। हाँ, है ना, चैतन्य महाप्रभु कौन जानते हैं? कैसे जानते हैं? कृष्ण भक्त के रूप में आए हैं, भक्त रूप स्वरूपकम, भक्त के रूप में श्री कृष्ण जब आए हैं तब ये रूप है श्री चैतन्य महाप्रभु। भगवान को भगवान, भगवान जब भगवान के रूप में आते हैं, उस रूप में उनको पहचानना पहचानने में कोई मुश्किल नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। भगवान जब भगवान के रूप में आते हैं तो उनको पहचानने में कोई असुविधा नहीं होता है, आसानी से हम उनको पहचान लेते हैं। बल्कि भगवान जब अपना भगवत्ता को छिपाकर जब आते हैं भक्तों के रूप में, तब उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है, जैसे महाप्रभु के बारे में होता है। और एक असुविधा ये हो गया है, क्योंकि महाप्रभु के रूप में कृष्ण भक्त के रूप में आए हैं और महाप्रभु को भगवान के रूप में भक्त लोग पहचान लिया है, स्वीकार कर लिया है, तो ऐसा कभी कभी ये होता है कि लोग बोलते हैं कि ओ तो मैं भगवान हूँ। चैतन्य महाप्रभु अगर भगवान हैं, चैतन्य महाप्रभु भक्त हैं, तो भक्त भगवान हो सकता है, तो मैं भी भगवान बन सकता हूँ। बल्कि हमें याद रखना चाहिए कि जीव कभी भगवान नहीं बन सकता है। जीव कभी भगवान बन सकता है? नहीं, भगवान हर स्थिति में ही भगवान है। जैसे श्री कृष्ण को भगवान बनना पड़ा क्या? श्री कृष्ण अपना जन्म से पहले ही, जब श्री कृष्ण देवकी के जठर में, देवकी के उदर में विराज कर रहे थे, तो तब स्वर्गलोक के निवासियों ने, देवताओं ने आकर उनको वंदना करना शुरू किया। ऐसे लीला विलास कर रहे हैं मातृगर्भ में, क्योंकि देवकी कृष्ण को, भगवान को अपना पुत्र के रूप में प्राणे का वासना किए थे, तपस्या किए थे, तो इस कारण भगवान अपना भक्तों का मन कामना पूर्ण करने के लिए देवकी के पुत्र के रूप में आए थे। तो माँ को अपना पुत्र के रूप में भगवान को प्राप्ति के लिए भगवान को माता की गर्भ में रहना पड़ा, नहीं तो अगर सीधा अगर निकल जाते थे तब तो माँ को ऐसा मालूम नहीं होता, प्रतीत नहीं होता कि मेरा पुत्र के रूप में आए हैं। भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। भक्त जब चाहता है कि भगवान को मैं, भगवान मेरे पुत्र के रूप में आए, तो भगवान भक्तों की ये कामना पूर्ण करने के लिए आ जाते हैं, जैसे देवकी के पुत्र के रूप में आए थे। और भागवतम में वर्णन है, पहले भी प्रश्नी के पुत्र के रूप में भगवान आए थे, प्रश्न गर्भ के रूप में। तो वैसे भगवान अपना भक्तों के मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनके पुत्र के रूप में आते हैं, जैसे देवकी के पुत्र के रूप में भगवान आए थे। बल्कि जब भगवान देवकी के गर्भ में थे, तब देवताओं को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं, तो उन्होंने देवकी के सामने आकर प्रार्थना करना शुरू किया, वंदना करना शुरू किया, देवकी नंदन। और जन्म के पश्चात भगवान अपना चतुर्भुज रूप लेके देवकी वसुदेव को दिखाया कि मैं भगवान हूँ, डरने का कोई कारण नहीं। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो देवकी और वसुदेव बहुत डर गए थे कि कंस आकर इस पुत्र का अब मार डालेगा, तो उनका ये भय दूर करने के लिए भगवान उसी समय ही अपना चतुर्भुज रूप प्रकाश करके अभय प्रदान किया। तो वैसे हम देखते हैं भगवान को कभी भगवान नहीं बनना होता है, भगवान हर स्थिति में ही भगवान है। और हम सब, हम क्या जन्म से ही भगवान हैं? ऐसा या कोई है जो जन्म से ही भगवान थे? तो हम जैसे हैं वैसे ही हम रहेंगे, पर हमारा स्थिति दो प्रकार का होता है। हम सब क्या है? जीवात्मा है। ये भी एक प्रश्न है, ये भी पूछने का ये भी एक सवाल है कि हम क्या जीवात्मा है या परमात्मा है? हम जीवात्मा है, भगवान परमात्मा है, और भगवान हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। देखिए ये आध्यात्मिक ज्ञान का ये है ABCD, पहली पाठ। ये अगर हम नहीं समझेंगे तो आध्यात्मिक भावना में हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। दीज आर द प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग। जैसे कोई भाषा सीखने के पहले हमको अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए हमको पहले क्या सीखना पड़ा, ABCD सीखना पड़ा। हिंदी भाषा सीखने के पहले हमको क्या सीखना पड़ा, अ आ ई सीखा ना। तो ये पहला पाठ अगर नहीं मिला तो भाषा हम सीख सकेंगे। वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होने के लिए ये ज्ञान हमें सबसे पहले प्राप्त होना चाहिए। ये तीन विषय में, तीन विषय की ज्ञान प्राप्त होना अवश्य ही जरूरी है। पहला क्या है, एक है आत्मा अर्थात जीवात्मा, ईश्वर या परम आत्मा और प्रकृति। ये तीन विषय की ज्ञान प्राप्त होना अवश्य ही जरूरी है। हम सब जीवात्मा हैं और भगवान है परम आत्मा और हम सब उनके अंश हैं। हम सब भगवान के अंश हैं, हम भगवान नहीं हैं, बल्कि भगवान के अंश होने के कारण भगवान में जो गुण है वो गुण हम में भी है। जैसे एक बूंद पानी भी पानी और समंदर भी पानी। गुण के अनुसार पानी एक बूंद, पानी का एक बूंद और समुंदर एक है, दो ही पानी है, बूंद भी पानी है समुंदर भी पानी है। बल्कि बूंद और समुंदर में अंतर क्या है, कुछ अंतर है, क्या अंतर है? हाँ, बूंद है छोटा सा एक बूंद और सागर है एक विशाल जल के आगार। तो वैसे ही गुण के अनुसार जीवात्मा और भगवान में कोई अंतर नहीं, बल्कि आयतन के अनुसार अंतर है। भगवान असीम और हम सब सीमित। भगवान के अंश होने के कारण भगवान का गुण भी हम में है, बल्कि हम कभी भगवान नहीं बन सकते हैं। और प्रकृति क्या है, प्रकृति भी प्रकृति है भगवान का शक्ति। और भगवान का यह शक्ति दो तरह का है, दो प्रकार के हैं। एक है परा प्रकृति और एक है जड़ा प्रकृति, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, चिन्मय जगत। भौतिक जगत में हम सब, हम जहां हैं वो जगत, वो जगह है भौतिक, पंचभूत से बना हुआ है जड़ जगत। बल्कि इस जगत के परे और एक जगत है जो है चेतन या चिन्मय। हम सब जड़ है या चेतन है, हम चेतन हैं, हम चेतन हैं, हम क्योंकि हम उस जगत से आए हैं। हम सब कहां से आए हैं, हम आध्यात्मिक जगत से आए हैं। आध्यात्मिक जगत से आकर हम इस भौतिक जगत में गिर गए हैं और इस भौतिक जगत में गिरने के कारण हम इस भौतिक जगत के बंधन में फंस गए हैं। हम भौतिक नहीं हैं, हम आध्यात्मिक हैं। आत्मा, आत्मा भी सच्चिदानंद है, बल्कि इस भौतिक जगत के बंधन में गिरने के कारण आत्मा अपने आप को इस भौतिक जगत का ही सोच रहे हैं और ये शरीर को अपना स्वरूप समझ रहा है। तो ये स्थिति क्या आनंददायक स्थिति है? आनंददायक नहीं है, यह कष्टदायक स्थिति है। हम जो हैं वो ना होकर हम अगर दूसरा कुछ बन जाता है तब हमें कष्ट प्राप्ति होता है। हम असल में है सच्चिदानंद, बल्कि हम क्या पहले बताया था मैं, सच्चिदानंद की जगह हम क्या बन गया है, हम असत अचेतन और निरानंद बन गए हैं। तो इसलिए हमारा वासना हर समय क्या है, सच्चिदानंद बनने का वासना हर समय है, हर जीव में। हम सब क्या चाहते हैं, हमारा पहले चाहना क्या है, हम नहीं मरना चाहते है ना, मतलब हम सत बनना चाहते हैं, हम हर समय चेतन बनना चाहते हैं, चेतन रहना चाहते हैं। जब चेतना का रुकावट होता है तो कष्ट होता है। जैसे इस शरीर के माध्यम हमारा चेतना बह रही है ना, नर्वस सिस्टम के माध्यम हमारे शरीर में चेतना का प्रवाह हो रहा है, और जब वो चेतना जब रुक जाता है तो क्या होता है, कष्ट होता है। कभी देखा एक डंडा लेके हाथ में मरने से क्या क्या होता है, क्यों, क्योंकि वो चेतना तब रुक जाता है, चेतना नहीं फ्लो कर सकता है, इसलिए कष्ट हो रहा है। जितने सारे कष्ट है शरीर का, चेतना का रुकावट के कारण। जब चेतना शरीर से सही रूप से जब बहती है तो चेतना शरीर तंदुरुस्त रहता है, सुस्त रहता है। जब चेतना का प्रवाह रुक जाता है तब कष्ट प्राप्ति होता है। तो हम इसलिए हर समय हम चेतन रहना चाहते हैं, और हम हर समय किसका अन्वेषण कर रहा है, जो कुछ हम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, आनंद के लिए। क्यों, क्योंकि हम आत्मा है, आत्मा सच्चिदानंद है, बल्कि हम इस भौतिक जगत में ये भौतिक शरीर के माध्यम हम सच्चिदानंद बनने का कोशिश कर रहा है ना, हम ये शरीर को सच्चिदानंद बनाने का कोशिश कर रहा है। बल्कि ये शरीर क्या कभी सच्चिदानंद बनेगा, शरीर नाशवान है, शरीर कभी अमर नहीं बनेगा, शरीर में कभी पूर्ण चेतना का प्राप्त विकास नहीं होगा, यह शरीर के द्वारा कभी आनंद प्राप्ति नहीं होगा। तो हम कुछ ढूंढ रहे हैं बल्कि उसका प्राप्ति नहीं हो रहा है, इसलिए हमें कष्ट हो रहा है। कष्ट असल में क्या है, कष्ट का मतलब क्या होता है, कष्ट का मतलब क्या है, जो हम मांगते हैं वो जब नहीं मिलता है तो वो कष्ट है, और जो हम मांगते हैं वो जब मिल जाता है तो उसे हम कष्ट का विपरीत क्या है, आनंद। जब हमें मिल जाता है तो हमें आनंद होता है, दिल खुश होता है, जब नहीं मिलता है तो दिल में दुख होता है। बल्कि असल बात यह है कि इस भौतिक शरीर के द्वारा हम कभी हमारा असल चाहना का प्राप्ति नहीं हो सकता है। हम अगर हमारा असल प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस भौतिक जगत के बंधन से निकालकर आध्यात्मिक जगत में वापस चले जाना। हम आत्मा है, हम आत्मा आत्मिक स्वरूप में, आध्यात्मिक स्वरूप में हमारा जो स्थिति वही है असल आनंददायक स्थिति। इसका देखिए एक दृष्टांत एक इस रूप से दिया गया है। चिंगार, चिंगार क्या है, चिंगार आप जानते हैं, चिंगार चिंगार क्या है, आग, अग्नि का कण है चिंगार, अग्नि का कण। तो चिंगार जब आग से निकल जाता है तो क्या होता है, वो बुझ जाता है। बुझ के क्या होता है, वो कहां गिरता है, भस्म बन जाता है, भस्म में गिरकर वो भस्म बन जाता है, था चिंगार बल्कि अब बन गया भस्म। तो चिंगार का गुण और भस्म का गुण क्या एक है, यद्यपि चिंगार ही भस्म बना है, बल्कि भस्म क्या चिंगार है, नहीं, अपना गुण खो बैठने के कारण वो भस्म बन गया। तो उस भस्म को अगर हम फिर से उसका जो स्वाभाविक गुण, चिंगार का गुण क्या था, चिंगार का गुण था आग, तो अगर भस्म को हम आग बनाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? वो जो चिंगार जो था जो भस्म में गिरा है उसको लेकर फिर वापस आग में डालने से वो फिर आग बन जाएगा। हाँ, तो ऐसे ही हम आध्यात्मिक हैं, हम सच्चिदानंद हैं, बल्कि सच्चिदानंद होते होते हुए भी जब हम भौतिक जगत में गिर गया तो हम क्या गया, हमारा स्थिति कैसा बन गया, हम भी जड़ बन गया है। ये भौतिक शरीर किससे बना है? पंचभूत से बना है। तो ये शरीर को हम अपना स्वरूप समझ रहा है और इस शरीर के माध्यम हम क्या चाहते हैं, आत्मा का जो गुण वो गुण हम शरीर के माध्यम प्राप्त होने का कोशिश कर रहे हैं। बल्कि ये कोशिश ये चेष्टा कभी सफल होगा? ये शरीर कभी सच्चिदानंद बनेगा? कभी नहीं। तो सच्चिदानंद अगर हम बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? हाँ, चिंगार का दृष्टांत देखो, भस्म और चिंगार का क्या करना होगा? आप समझ रहे हैं? कौन कौन समझ रहे हैं? ओके, वेरी गुड। तो ये शरीर को बंधन से हमें मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में वापस जाना है, इसलिए भगवान आते हैं। भगवान आकर इस भौतिक जगत में आकर हमें क्या शिक्षा देते हैं? भगवान के साथ संपर्क जोड़ो तब तुम्हारा सारे समस्याएं का समाधान हो जाएगा। भगवान के साथ संपर्क जोड़ो। भगवत गीता में भगवान क्या बताया? भगवान क्या बताया? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तुम्हारा आलतू फालतू जितने सारे धर्म हैं, तुम्हारा जितने सारे कर्तव्य हैं, तुम जो जिसको बहुत सोचते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबको त्याग दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, केवल मेरा ही शरण ले लो। माम एकम, एकम का मतलब केवल मेरा, और किसी को नहीं। मेरा का मतलब क्या है? मेरा का भी एक और एक कंडीशन रहता है। मैं, मेरा का मतलब है मैं और मेरा प्रतिनिधि, मैं और मेरा प्रतिनिधि जो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको। तुम अगर मेरा शरण लेना चाहते हो तो मेरा रिप्रेजेंटेटिव के शरण लो पहले। भगवान का शरण लेने का मतलब है भगवान का भक्त का शरण लेना। भगवान का भक्त का शरण लेने भी लेते भी बिना लेते बिना और लिए बिना, दोनों ही गलत था। भगवान का भक्त का शरण लिए बिना हम कभी भगवान का शरण प्राप्त नहीं हो सकते। तो ये शिक्षा भगवान दे रहे हैं। जो भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है, भगवान का जो प्रतिनिधि है, हाँ, उनको शरण लेना होगा। माम एकम का मतलब है भगवान और भगवान का प्रतिनिधि का। उनके शरण लेने से क्या फायदा होता है? भगवान का प्रतिनिधि का जब शरण लेता है तो वो क्या बताते हैं, कब बोलते हैं वो? हाँ, क्या बोलते हैं वो? बोलते हैं कि हाँ मेरा शरण लो। वो क्या बोलते हैं? भगवान के शरण लो। वो कभी नहीं बोलता है माम एकम शरणं व्रज। वो बोलते हैं कृष्ण का ही उद्धृति देकर बोलते हैं कृष्ण के शरण लो। वैसे ही कृष्ण जब भक्त बन के आए हैं तो वो क्या, उन्होंने क्या बताया? भक्त रूप में श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा है कृष्णम एकम शरणं ब्रज। कृष्ण बोल रहा है माम एकम शरणं ब्रज, और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ओ कृष्ण ही भगवान है और उनको शरण लो, उनके शरण लो, कृष्ण को शरण लो। कृष्ण की शरण लो। शरण स्त्रीलिंग है ना, कृष्ण। हाँ, कृष्ण हिंदी में मेरा ये बहुत मुश्किल हो जाता है, ये हिंदी भाषा का एक बहुत ये बहुत प्रॉब्लम है, और कोई भाषा में ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं। कौन स्त्रीलिंग, और जो भाषा में स्त्रीलिंग, पुंगलिंग और क्लीबलिंग, ये तीन लिंग, उसका ये देखकर पता चलता है, जैसा पुरुष पुंगलिंग है, स्त्री स्त्रीलिंग है, और जो जो जड़ है वो है क्लीबलिंग। बल्कि हिंदी में जड़ भी पुरुष बन गया है या तो स्त्री बन गया है, और इसलिए जो हिंदी सीखने का कोशिश कर रहे हैं उसका बहुत सारे मुसीबत होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो मैं तो जब बोलता हूं, मैं सोचा ओम स्त्रीलिंग पुंगलिंग का विचार मैं नहीं रखूंगा, का के की का विचार नहीं रखूंगा आप, और मैं आशा करता हूं कि आप सब समझ लेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा क्या है, कृष्ण की शरण लो। कृष्ण का शरण लेने से क्या होगा, कृष्ण की शरण लेने से क्या होगा, हम इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त होकर हम हमारा आत्मिक स्वरूप में प्राप्त स्वरूप में स्थित होकर हम भगवान के पास आध्यात्मिक जगत में वापस चले जा सकते हैं। इसलिए भगवान का जो शिक्षा है वो शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। भक्ति का मतलब है भगवान के शिक्षा ग्रहण करके भगवान के शरण लेकर भगवान को सेवा करना। तब क्या होता है, आत्मा जो भौतिक जगत में था भगवान के साथ युक्त होने के कारण आत्मा फिर से आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त होता है। देखिए हम योग शब्द का बहुत प्रयोग, हम योग शब्द का शब्द को जानते हैं। योग, योग शब्द का अर्थ क्या है, योग शब्द का अर्थ युक्त होना। तो किसके साथ युक्त होना है, किसके साथ युक्त होना है, योग के माध्यम किसके साथ युक्त होना है, भगवान के साथ युक्त होना है। जितने सारे योग पद्धति हैं उसका उद्देश्य है भगवान के साथ युक्त होना। योग का उद्देश्य और कुछ नहीं है, यद्यपि अष्टांग योग के द्वारा योग सिद्धि प्राप्ति होता है, बल्कि वो सिद्धि योग का उद्देश्य नहीं है। योग का सिद्धि क्या है आप जानते हैं, योग अनुशीलन करने से सिद्धि प्राप्ति होता है, जैसे अनिमा लघिमा प्राकम्य शास्ति इत्यादि। तो ये जो सिद्धि है, ये सिद्धि का योग सिद्धि क्या, योग का उद्देश्य है, ये असल में ये सिद्धि क्या है, ये सिद्धि है ऑब्स्टकल्स, रुकावट बाधा। योग का उद्देश्य है भगवान के साथ युक्त होना, बल्कि भगवान के साथ युक्त होने के लिए हमें लायक बनना होगा, हमें उपयुक्त बनना, भगवान के साथ युक्त होने का लायक बनना होगा, है ना। भगवान के साथ अगर हम युक्त होना चाहते हैं तो उसके उपयुक्त होना होगा। तो हम उपयुक्त बने हैं क्या, लायक हुए हैं क्या, उसका परीक्षा है ये सिद्धि के द्वारा। माया ये सिद्धि देती है, बल्कि हमें याद रखना है कि हमें क्या ये सिद्धि चाहिए या भगवान चाहिए। अगर हम बोलेंगे कि हमें सिद्धि चाहिए तब क्या होगा, तो फेल हो जाएंगे, मतलब भगवान नहीं मिलेगा, सिद्धि मिलेगा। थोड़ा कुछ अलौकिक क्षमता मिलेगा, भगवान नहीं मिलेगा। तो योग का असल उद्देश्य है भगवान के साथ युक्त होना, तो भगवान के साथ जब हम युक्त होते हैं तब हम अपना आत्मिक स्वरूप में हम स्थित होते हैं, तब हम तब मतलब तब आत्मा आत्मा बन जाता है। अब आत्मा क्या है? अब आत्मा शरीर है। आत्मा अर्थात मैं अब क्या बन गया हूं? मैं अपना शरीर, या शरीर भी दो प्रकार का होता है, एक है स्थूल शरीर, एक है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर ये पंचभूत से बना है और सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि और अहंकार से बना है। ये दोनों शरीर ही भौतिक हैं। मन की द्वारा बना हुआ जो शरीर वो भी भौतिक है, सूक्ष्म है बल्कि भौतिक है। परंतु हमारा असल स्वरूप क्या है? असल स्वरूप है आत्मा, और आत्मा सच्चिदानंद है। आत्मा मतलब आत्मा का न तो कभी मृत्यु होता है, न आत्मा का कभी कठिनाई या निरा आत्मा कभी कष्ट प्राप्त नहीं होता है। आत्मा आनंदमय है, आत्मा पूर्ण चेतन है, आत्मा नित्य है। जब हम हमारा आत्मिक स्वरूप में हम जब आत्मिक स्वरूप प्राप्त होते हैं तब हमारे सारे समस्याएं का समाधान हो जाता है। जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? समस्या प्राप्ति होना या समस्या का समाधान करना? हम हर पल हर पग हम समस्या का समाधान करने का कोशिश कर रहे हैं, बल्कि सारे समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, कब होता है? सारे समस्या का समाधान तब होता है जब हम भगवान के साथ हमारा संपर्क जोड़ लेते हैं, जब हम हमारा चिन्मय स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तो ये समस्या का समाधान हम करेंगे या नहीं करेंगे? ये समस्या का समाधान अगर हम करना चाहते सारे समस्याएं का समाधान अगर हम करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? भगवान के साथ हमारा संपर्क जोड़ना होगा। और भगवान के साथ संपर्क हम कैसे जोड़ सकते हैं? भगवान के पास अपने आप को समर्पण करने के माध्यम, भगवान के पास अपने आप को समर्पण करने का शिक्षा ही भगवान स्वयं दे रहे हैं यहां आकर, और भगवान भक्तों के रूप में आकर शिक्षा दे रहे हैं। और जब हम भगवान के भक्तों से मिलते हैं तो वो भी क्या बोलते हैं? भगवान के भक्त क्या बोलते हैं? आप जब दूसरे के साथ बातें करते हैं, आप सब भक्त हैं, दूसरे के साथ जब बातें करते हैं तो वो आप उनको क्या उपदेश देते हैं? क्या उपदेश देते हैं? भगवान, अच्छा एक उपदेश मिला है, भगवान के शरण लो। तो भगवान का भक्तों के साथ मुलाकात होने से वो क्या उपदेश देते हैं? भगवान है, भगवान के बारे में उन्हें समझाते हैं, सुनाते हैं, और अंत में भगवान के शरण लेने का उपदेश देते हैं, है ना? तो भगवान और भगवान के भक्त यही उपदेश ही देते हैं। भगवान कभी नहीं बोलते हैं तुम हमसे दूर चले जाओ, भगवान के भक्त कभी नहीं बोलते हैं तुम भगवान से दूर चले जाओ, वो हर वक्त बोलते हैं कि भगवान के साथ संपर्क जोड़ लो। तो वैसे जब हम भगवान के साथ संपर्क जोड़ लेते हैं तब क्या होता है? समस्याएं रहता है नहीं, सारे समस्याएं का समाधान हो जाता है। तो सारे समस्याएं का समाधान करना क्या मुश्किल है, कठिन है? उसमें कोई असुविधा है? तो ये बहुत सरल है, इसको ग्रहण हम इसको समय सारे समस्याएं का समाधान हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो करना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु आके क्या शिक्षा दे रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु आकर हमें निर्देश दे रहे हैं कि तुम इस मंत्र को जप करो, इस मंत्र का कीर्तन करो। मंत्र, इस मंत्र का मतलब क्या है? असल में ये मंत्र एक प्रार्थना है। यद्यपि ये मंत्र कृष्ण के नाम के समन्वय है, परंतु असल में ये एक प्रार्थना है। कृष्ण हरे, कृष्ण और राम, ये तीन नाम का पुनरावृत्ति होकर हुआ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे का मतलब यहां भौतिक जगत के बंधन से मुक्त होकर भगवान के साथ युक्त होना। हरे, हरा, हरी, इसका संबोधन में भौतिक जगत का क्लेश जितने सारे हैं उसको हरण हो जाता है जिनके शरण लेने से। किसके शरण लेने से भौतिक जगत का सारे क्लेशों का निवृत्ति हो जाता है? कौन हमारा सारे कठिनाई को चुरा लेते, हरण कर लेते हैं? भगवान। हरे कृष्ण आकर्षण करने वाला, उनके प्रति जब हम आकृष्ट होते हैं वो है सर्वाकर्षक। और हमारा कार्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है? वो सर्वाकर्षक के प्रति आकृष्ट होना। जो सर्वाकर्षक हैं, जो सबको आकर्षण करने वाला है, उनके प्रति आकृष्ट होना क्या कोई कठिन काम है? जैसे मैग्नेट, चुंबक लोहा को आकर्षण करता है, तो लोहा के लिए चुंबक के प्रति आकृष्ट होना क्या कठिन होता है? नहीं, बल्कि लोहा का टुकड़ा का अगर अहंकार रहता था, खुद विचार करने का क्षमता रहता था, तो वो विचार कर सकता था कि मैं लोहा के और जाऊं या पानी के और जाऊं, लोहा के और जाऊं या लोहा के दूर चुंबक के और जाऊं या दूसरे और जाऊं। हमारा स्थिति वैसा है, हम अगर ये अहंकार को त्याग देते हैं तो बहुत आसानी से हम भगवान की ओर आकृष्ट हो सकते हैं, परंतु हमारे अहंकार जो है वो रुकावट डालता है। रुकावट कैसा है? जो चुंबक लोहा को आकर्षण करता है, मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन पार्टिकल, बल्कि आयरन पार्टिकल के ऊपर अगर कुछ लगा दिया जिसको वो आकर्षण नहीं करता है तो लोहा भी उसके प्रति आकृष्ट, चुंबक की ओर नहीं जाएगा। हमारा अहंकार है वैसा, आत्मा के ऊपर एक आवरण लग गया है जिसके कारण वो रुकावट डाल रहा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इस अहंकार को त्यागना चाहिए। जब हम अहंकार को त्याग देते हैं तब हम बहुत आसानी से भगवान के साथ युक्त हो सकते हैं। तो ये एक कठिनाई है जिसको हमें पार करना होगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हरे कृष्ण, कृष्ण सर्वाकर्षक हैं, कृष्ण के प्रति आकृष्ट होना कोई मुश्किल नहीं है, परंतु तुम जो हो वो बनना हो, तुम जो आत्मा हो आत्मिक स्वरूप में तुमको स्थिति प्राप्ति होना चाहिए। और तब क्या होगा? कृष्ण के प्रति आकृष्ट होने से राम, राम का मतलब क्या है? आनंद। रमते, जो आनंद प्रदान करते हैं वो है राम। जो आनंद प्रदान करने वाला है उनके साथ अगर हम युक्त हो जाते हैं तो आनंद हमें ऐसे ही मिल जाएगा। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं? हमें प्रार्थना करने का, भगवान के पास प्रार्थना करने का शिक्षा दे रहे हैं। हे सर्वाकर्षक परमेश्वर भगवान, इस भौतिक जगत में मैं बहुत क्लेश प्राप्त हो रहा हूं, मैं कष्ट भोग रहा हूं इस भौतिक जगत में, आप कृपा करके हमारा ये कष्टदायक स्थिति से उद्धार करके अपने आपका सेवा में युक्त होने का अवसर दीजिए। यह है हरे कृष्ण महामंत्र का उद्देश्य। जब हम ऐसे भगवान के पास प्रार्थना करते हैं तो भगवान सुनते हैं, जरूर सुनते हैं, बल्कि भगवान सुनते हैं, देखते भी हैं। भगवान सुन रहे हैं, हरे कृष्ण कर रहे हैं, और भगवान देखते भी हैं कितना अहंकार हम में रह गया है। जब भगवान देखते हैं कि हमारा अहंकार रह गया है तो भगवान बोलते हैं, तो ठीक है, तुम और कुछ समय अपना अहंकार के द्वारा थोड़ा और कुछ कष्ट प्राप्त हो, उसके बाद जब अहंकार त्यागने के लिए तुम तैयार हो जाओगे तब हाँ तुम्हारा प्रार्थना मैं सुनूंगा। अब तो तुम बोल रहे हो तोता जैसा, बल्कि तुम उसको यू डोंट मीन इट, तुम बोल रहे हो बल्कि तुम उसको सही रूप से चाह नहीं रहा हो। तुम बोल रहे हो सेवा दीजिए सेवा दीजिए, मुंह से बोल रहे हो सेवा दीजिए सेवा दीजिए, और मन में क्या हो रहा है, कौन हमको सेवा करेगा। हमको सेवा करो। मुंह से बोल रहे भगवान को भगवान सेवा दीजिए, बल्कि असल में कौन क्या बोल रहे हैं, भगवान हमें सेवा कीजिए। तो भगवान बोलेगा ठीक है चलो, मैं तो तुमको चाहता हूं, पर तुम अगर नहीं चाहते हो तो थोड़ा दिन और रहो। माया का कुछ कठिनाई, माया का कुछ पिटाई और सहन करो, उसके बाद जब तुम लायक बनोगे, तुम जब सही रूप से जब चाहोगे तब तुम मेरे पास आ सकते हो। तो हमें अब क्या करना चाहिए, अहंकार रखना चाहिए, अहंकार त्यागना चाहिए। अहंकार त्यागने के लिए क्या करना होगा, ये अहंकार को त्याग कर कैसे हम कर सकते हैं, भगवान के शरण लेने से, भगवान के भक्त को शरण लेने से। अहंकार क्या बोलता है, मैं बड़ा हूं। तो अगर हम अहंकार को त्यागना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमको छोटा बनना चाहिए। हम आप सोचते हैं मैं कितना बड़ा हूं, मैं हिमालय पर्वत जब देखता हूं उससे मैं सोचता हूं कि मैं उससे भी बढ़कर हूं, उससे भी बड़ा हूं। बल्कि हमारा असल स्वरूप कितना बड़ा है, हम अगर हमारा आत्मिक स्वरूप प्राप्त होना चाहते हैं तो आत्मा का आयतन कितना है, व्हाट इज द साइज ऑफ द स्पिरिट सोल, केशाग्र सतभागस्य सतधा, बाल के जो अग्रभाग जो है उसको 10,000 भाग का एक भाग। तो आत्मा बनना चाहते हैं आप लोग, अपना आत्मिक स्वरूप प्राप्त होना चाहते हैं तो कितना बड़ा बनना होगा, आत्मा केशाग्र सतभागस्य सतधा, हम इतना बड़ा है। और ये भी एक विचार ऐसे हम सोच सकते हैं, आध्यात्मिक जगत के प्रवेश करने का जो द्वार है वो बहुत छोटा है, तो वहां अगर हम प्रवेश करना चाहते हैं तो उससे भी छोटा बनना होगा। इसलिए केशाग्र सतभागस सतधा, जो केशाग्र का बाल के अग्रभाग का 10,000 भाग का जो एक भाग है उतना छोटा बनना होगा, तभी हम केवल वहां प्रवेश कर सकेंगे। तो बनने के लिए तैयार हैं, कौन तैयार है, ऐसा लगता है कि कोई तैयार, ऐसे कोई है जो तैयार नहीं है, सोच समझ के विचार करना, तैयार हैं, हाथ भी नहीं उठ रहा है, आवाज भी नहीं हो रहा है, ओके, बहुत अच्छा था। तो तैयार अगर हो गया है तो हार्दिक भाव लेकर बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, 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 हरे। अर्थात भगवान के पास हम प्रार्थना कर रहे हैं इसके द्वारा कि भगवान हमें बड़ा मत बनाइए, हमें छोटा बनने का अवसर दीजिए, ताकि हम छोटा से भी छोटा बन सकते हैं। भक्त का वही है मनोभाव, भक्त कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझते हैं, जितने वो आगे बढ़ते हैं उतना ही वो छोटा बन जाता है। यहां और भी एक विचार है, छोटा हम बनना चाहते हैं, बल्कि जब भगवान का सेवा के कार्य सेवा का जरूरत होता है, तब अगर बड़ा बनने का जरूरत होता है तो ठीक है, हम बड़ा भी बनने के लिए तैयार हैं। हम तो है छोटा, बल्कि भगवान के भगवान की सेवा के लिए अगर बड़ा बनना होगा तो हम बड़ा बनने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी को गंधमादन पर्वत लेके जाना है, तो पर्वत उठाने के लिए बड़ा बनना पड़ा, तो भगवान की सेवा के लिए बड़ा बनने के लिए तैयार रहते हैं, भगवान के मर्यादा स्थापन करने के लिए बड़ा बनने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान का जब सेवा है तब छोटा नहीं, तब हम बड़ा बनने के लिए तैयार हैं। रामचंद्र जी ने अंगद को भेजा था रावण के सभा में दूत के रूप में, लड़ाई छोड़ो, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, तुम सीता माता को वापस कर दो और हम लड़ाई नहीं करेंगे। तो अंगद जब देखा रावण एक बड़ा सिंहासन में बैठे हैं और अंगद को एकदम तुच्छ भाव से आचरण कर रहा था, तब अंगद का मन में ये भावना आया, तू रावण है, राक्षस है, भगवान का विरोधी है और तू इतना बड़ा आसन में बैठा है। तो अंगद अपना लंगूर से एक आसन बनाया ऐसे, जो रावण से भी बढ़कर बन गया, रावण से भी ऊंचा, तब वहां से बात करने लगा उस रावण के साथ। ये है भक्ताभिमान, भगवान का भक्त बनने का अभिमान, ये अहंकार नहीं है। मेरा प्रभु परमेश्वर भगवान है और मैं उनका प्रतिनिधि हूं, तो इसलिए उनका मर्यादा हमको स्थापन करना चाहिए। हनुमान क्या कुछ किया था हनुमान ने, लंका जला दिया, ऐसे सब बोलता है भक्त बहुत विनम्र होता है। बल्कि जब मैं हनुमान को देखता हूं तब हम कैसे देखता हूं, हनुमान विनम्र है रामचंद्र के सामने, राम भक्त के सामने विनम्र है, बल्कि रावण के सामने वो वज्रादोपी कठोर, वज्र से भी कठिन। ये है भक्ताभिमान, सेवा के लिए ये अभिमान सही है, बल्कि असल में हम अपना आत्मिक स्वरूप भगवान को सेवक बनने के लिए अहंकार को त्यागना होगा। उस समय हम बड़ा नहीं, हम छोटा से भी छोटा, अनोर अनियान, अनु से भी अनियान, अनु से भी छोटा से भी छोटा। हरे कृष्णा। तो आज श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि गौर पूर्णिमा। चैतन्य महाप्रभु क्यों आए थे? श्री चैतन्य महाप्रभु हमें कृष्ण भक्ति के शिक्षा देने के लिए, कृष्ण भक्त बनने के लिए शिक्षा देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो आज हम कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि ये गौर पूर्णिमा मनाएंगे, कैसे मनाएंगे? बहुत अच्छा कृष्ण भक्त बन के। सब कृष्ण भक्त बनने के लिए तैयार हैं? बहुत अच्छा। और मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं कि चैतन्य महाप्रभु आपके ऊपर कृपा आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि आप सब बहुत अच्छा कृष्ण भक्त बन सके। गौर प्रेमानंदे हरि। कोई प्रश्न है किसी को? इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, हरे कृष्ण. बद्ध जीव और हाँ, अच्छा, बद्ध जीव और मुक्त जीव में क्या अंतर है? हाँ, बद्ध जीव और मुक्त जीव का अंतर है ये. साधारण विचार से, जो भौतिक जगत का बंधन में जो फंसा हुआ है वो है बद्ध जीव. जो जीव इस भौतिक जगत में, जगत के बंधन में है, वो है बद्ध जीव. और जो भौतिक जगत के बंधन से मुक्त हो गए हैं वो है मुक्त जीव. ठीक है. अच्छा, और ये इसका गंभीर विचार ये है कि जो भगवान को सेवा में युक्त है वो है मुक्त जीव, जो भगवान को सेवा छोड़ के माया को सेवा कर रहा है वो है बद्ध जीव. सेवा किसी को किसी ना करना ही होगा. हाँ, जैसे तुम घर में हो, घर में क्या, यद्यपि तुम घर के मालिक हो, बल्कि तुम घर में क्या कर रहे हो? घर वाले को सेवा कर रहे हो ना. हाँ, जैसे रुपया कमाना है, क्यों कमाना है? घर वालों को देखभाल करने के लिए. तो ये जो घर वाले का जो सेवा हो रहा है, वो लोग अगर कृष्ण भक्त है तब तो बहुत अच्छा है. तो कृष्ण भक्तों का सेवा भी मुक्ति का ही स्वरूप है. बल्कि अगर घर वाले कृष्ण भक्त नहीं है और तुम उनका सेवा कर रहे हो तो किसका सेवा हो रहा है? माया का सेवा हो रहा है. क्योंकि ये जो बंधन जो है ये माया का बंधन है. ये बंधन माइक है. माइक मतलब ये शरीर के संपर्क से जो संपर्क वो है माइक. बल्कि आत्मा का संपर्क से जो संपर्क है वो है चिन्मय. तो सोचा बद्ध और मुक्त में अंतर क्या है? ठीक है, जो भगवान का सेवा कर रहे हैं वो मुक्त है. जैसे तुम अब भगवान को सेवा कर रहे हो, तुम क्या बद्ध हो या मुक्त हो? ओके, वेरी गुड. हरे कृष्णा. और कोई? हाँ हाँ, जो भगवान को शरण ले लिए हैं वो मुक्त है. या ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये चेतना के विचार से ही उसका भिन्न भिन्न शरीर. शरीर मिला है, शरीर ये है. ऐसे साधारणतया आपात दृष्टि में ये शरीर के अनुसार हो रहा है 84 लाख ज्योनि का. बल्कि वो शरीर भी जो है वो चेतना के अनुसार ही प्राप्ति हुआ है. और डायनासोरस जो था वो आज लिजर्ड बन गया है. ठीक है, चेतना एक ही है. देखो शरीर कभी बड़ा होता है, शरीर कभी छोटा होता है. जैसे एक पौधे का शरीर इतना छोटा है और एक अश्वत्थ वृक्ष का शरीर कितना बड़ा है. बड़ा छोटा में क्या है? बल्कि चेतना. तो डायनासोरस का जो चेतना है और लिजर्ड का जो चेतना है एक ही है, एक ही तरीका का है. थोड़ा कुछ अंतर हो सकता है. जब अहंकार बढ़ता है तो शरीर भी बढ़ता है. हाँ बताओ.
भगवान ने अस्तित्व धारण किए थे, वो इतने सुंदर है तो दूसरों को आकर्षण नहीं लगता है?
जब असुर जब जबरदस्त बन जाता है तो जब वो भगवान के प्रति आकृष्ट नहीं होता है परंतु भगवान का विरोधी बन जाता है, और विरोधी बनकर इस धरती पे बहुत सारे उत्पात करता है, तब उसको संहार करने के लिए भगवान अस्त्र धारण करते हैं। वो लोग लड़ाई करना चाहता है, भगवान को चुनौती देते हैं, आओ हमसे लड़ाई करो। यद्यपि भगवान खाली हाथ से भी लड़ाई कर सकता है, बल्कि उसके कुछ ये दिखाने के लिए, अब आम आदमी को कुछ शिक्षा देने के लिए भगवान लड़ाई करते हैं। यद्यपि भगवान एक पल में उसको खत्म कर सकता है, बल्कि भगवान बहुत दिन तक, बहुत महीना तक लड़ाई करते हैं, ताकि इस आम आदमी भगवान का जो शक्ति उसको पहचान सके। कोई बड़े, कोई जो असुर, बहुत शक्तिशाली कोई असुर को भगवान ऐसे अगर मार डाला, हाथ भी नहीं लगाया, तो आम आदमी को पता नहीं चलेगा कि भगवान का शक्ति कितना है। बल्कि भगवान वो जब देखता है कि कितना दिन तक लड़ाई हो रहा है और ये कितना शक्तिशाली होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है, तब बोलता है भगवान सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ऐसे आदमी को शिक्षा देने के लिए भगवान ऐसे लीला विलास करते हैं। भगवान को देखो, किसी को संहार करने के लिए भगवान को खुद कुछ नहीं करना पड़ता है। चाहे कितने बड़े असुर हो, अगर ऑक्सीजन 2 मिनट नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वो जी सकेगा? तो भगवान को भी नहीं आना पड़ेगा। भगवान अगर पवनदेव को बोलेंगे, जो पवनदेव उसको ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दो, तब वो खत्म हो जाएगा। बल्कि शिक्षा देने के लिए भगवान ऐसे लीला विलास करते हैं। यस, चैतन्य महाप्रभु का अस्त्र, महाप्रभु का अस्त्र था प्रेम। प्रेम, और वो प्रेम महाप्रभु प्रदान किए थे नाम की माध्यम। तो महाप्रभु का अस्त्र है नाम, प्रेम। जग हाँ, वो सबसे बढ़िया अस्त्र है। वो सबसे बड़ा असुर को भी कमाल कर देता है। उपांग है, भगवान का अंग है अवत ये नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु। और उपांग उनके, उनसे जो ये अवतार जो हैं वो है अंग, और उनके बढ़कर जो ये हैं एक्सपेंशन वो है उपांग, और पार्षद है अपने भक्तगण। उपांग भक्तगण ही है, उपांग सभी भक्तों के, भक्त ही आए हैं, भक्त के रूप में आए हैं। भगवान स्वयं भक्त के रूप में आए हैं। भगवान का अंग बलराम और महाविष्णु भी भक्त के रूप में आए हैं, और बहुत सारे भगवान के पार्षदों ने आए हैं भक्त के रूप में। ऐसे भगवान आकर भक्ति का विस्तार कर रहे हैं, भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। हरे कृष्ण। होली देखो, होली तो है वृंदावन में श्री कृष्ण गोपिया के साथ जो रंग ये खेलते हैं, फगुआ, ये फगुआ है होली। तो हम कृष्ण का वृंदावन लीला का अनुकरण नहीं करते हैं, हम कृष्ण का भक्त बनना चाहते हैं, इसलिए हम होली नहीं खेलते हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि मनाते हैं। और ये होली में क्या हो रहा है वैसे, हर आदमी सोचता है कि मैं कृष्ण बन गया हूँ और बाकी है सब गोपियां। तो उनके साथ हम होली खेलेंगे। तो ये जो भावना, ये भावना त्यागने के लिए हम जो कुछ करना चाहिए वो करने का प्रयत्न करते हैं। या टेक द माइक। हरे कृष्ण। वैसा ही और एक कार्य, होली जैसा और एक कार्य है डांडिया नृत्य। श्री कृष्ण रासलीला कर रहे हैं और कृष्ण का अनुकरण करके यहाँ डांडिया हो रहा है। और इस साल हमको बताया, पूछा था, भक्त लोग भी आएंगे डांडिया में अंश ग्रहण करेंगे क्या? हम बोला नहीं। Yeah, that is another
question.
Horika, the burning of that. That is the burning aspect of the thing.
So the holy that Krishna is playing is not associated with this holy?
No. Okay. Hare Krishna, Gaur Premanande. Hare.